हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जहाँ एक तरफ युग और सारा आपस में बात कर रहे थे, तो वहीं कृषा के कमरे में शब्द और कृषा बैठे हुए थे। कृषा हॉस्पिटल में रहते हुए बोर हो रही थी। कब से वो युग और सारा का वेट कर रही थी ताकि वे उसे वहाँ से ले जा सकें, लेकिन दोनों ही गायब थे। अजीब बात है, सारा मेरे साथ ही यहाँ पर आई थी। ऊपर से मैंने खुद युग को रिसेप्शन पर फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए देखा था, फिर दोनों कहाँ गायब हो सकते हैं, शब्द बोला। ये भी कोई पूछने की बात है, ज़रूर कहीं कोने में बैठकर अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होंगे। मुझे समझ नहीं आता हम उन दोनों का वेट क्यों कर रहे हैं, तो मुझे घर ले जा सकते हो, कृषा चिढ़कर बोली। उसे गुस्सा आ रहा था कि युग उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ, शब्द कृषा के पास से उठते हुए बोला। शब्द वहाँ से जाने को हुआ तभी युग और सारा वहाँ पर पहुँच गए थे। कृषा उन्हें तिरछी निगाहों से देख रही थी, उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला था। कृषा ने उन्हें देखकर मुंह बनाया और फिर तुरंत शब्द की तरफ देखकर बोली, शब्द, लगता है इन दोनों की दुनिया में हमारा कोई काम नहीं है, वैसे भी हमें उनकी बातें समझ नहीं आती हैं। ऐसा करो कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो, ये दोनों अपने आप आ जाएंगे। कुछ भी कहने से पहले शब्द ने युग की तरफ देखा, जो सर्द निगाहों से कृषा को घूर रहा था। सारा ने इशारे से शब्द को शांत रहने के लिए कहा। शब्द, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, वैसे भी शादी के फंक्शन कल से शुरू हो जाएंगे, हम दोनों निकलते हैं, युग कृषा को लेकर पहुंच जाएगा। सारा शब्द का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती वहां से ले जाने लगी। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो, मुझे इस डेविल के पास अकेले छोड़कर, तुम बहुत बुरी हो सारा, तुम मेरी बहन हो या युग की कोई रिश्तेदार जो जब देखो उसका फेवर लेती रहती हो, शब्द तो पहले से उसका भाई है तो वो क्यों देगा मेरा साथ, कृषा उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी कि उसने थोड़ी देर पहले जो भी कहा था उसे युग फिर से गुस्सा हो गया था। शब्द और सारा उसकी बात को ऐसे अनसुना करके चले गए जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। उनके जाते ही युग कृषा के पास आया और भौहें उठाकर बोला, हो गया तुम्हारा, पहले भी इसी डेविल के साथ रहती आई हो और आगे भी इसी के साथ रहना पड़ेगा, ड्रामा करना बंद करो। कृषा ने मुंह बनाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। युग व्हीलचेयर लेकर आया और उसने कृषा को केयरफुली व्हीलचेयर पर बिठा दिया था। इसकी क्या जरूरत है, मैं खुद से चल सकती हूँ, कौन सी मेरे पैरों में चोट लगी है, कृषा ने असहजता से कहा। उसे बहुत अजीब लग रहा था इस तरह व्हीलचेयर पर बैठकर जाते हुए। पता तो लगना चाहिए ना कि तुम पेशेंट हो, लोग भी तो देखें कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी कितनी केयर करता है, पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो अभी भी ये लग रहा होगा कि ये सब मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ, युग सार्केस्टिकली बोला और कृषा की व्हीलचेयर को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। युग जिस लहजे में बात कर रहा था उससे साफ था कि रास्ते में वो कृषा से उसके शब्दों के लिए अच्छी खासी बहस करने वाला था, ऊपर से अब तो वो ठीक भी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ युग के विला में ध्रुव और तारा साथ में रह रहे थे। युग का प्लान कहीं ना कहीं कामयाब हो गया था, तारा के जख्म भी धीरे धीरे भरने लगे थे। मजबूरी में ही सही, लेकिन ध्रुव उसका ध्यान रख रहा था, हालांकि इस बीच दोनों के बीच बिल्कुल बात नहीं हुई थी। ध्रुव सुबह का नाश्ता और दवाइयां लेकर तारा के पास कमरे में पहुंचा तो उसने देखा तारा अब तक बेड से तक नहीं उठी थी। ध्रुव ने एक नज़र उसे घूर कर देखा और बिना किसी शिकायत के वहां से जाने लगा, तभी तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही नाराज रहने वाले हो, तारा ने धीमी आवाज में कहा, 3 दिन हो गए, एक शब्द तक नहीं बोला है तुमने मुझसे, इतनी सजा काफी नहीं है क्या? ध्रुव ने तारा का हाथ झटका और बिना किसी भाव के बोला, तुम खुद सोच लो तुमने क्या किया है, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में ही तुम्हारी ये हालत हो गई, पूरी जिंदगी तुम्हें मेरी इसी खामोशी के साथ बितानी होगी। तारा की आंखें नम होने लगी थीं। कहीं न कहीं ध्रुव ने तारा को समझ लिया था। वो पहले से ही जानता था कि तारा की जिंदगी में खालीपन है, ऐसे में अगर वो उसके साथ बेगानों की तरह बर्ताव करता है तो उसे और भी तकलीफ होगी। ध्रुव को तारा को तकलीफ ही देनी थी, फिजिकल ना सही लेकिन मेंटली वो उसे टॉर्चर कर रहा था। अपनी बात खत्म करके ध्रुव ने गहरी सांस ली और कहा, वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम टाइम से उठती हो या अपनी मेडिसिन लेती हो या नहीं, लेकिन दवाइयां और खाना रखा है, ले लेना। ध्रुव ने वहां से जाने के लिए कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि तारा ने गुस्से में उसका लाया हुआ नाश्ता और दवाइयां नीचे जमीन पर फेंक दी थी। वो जोर से चिल्लाकर बोली, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो, जिस तरह तुम्हारी मॉम को वहां ट्रैप करके बुलाया गया था वैसे ही उसने मुझे भी धोखा दिया था, मैं बेवकूफ़ हूँ जो हर बार इमोशंस के जाल में फंस जाती हूँ, अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि मैं उस मौलिक मल्होत्रा की बेटी हूँ और इस हिसाब से दक्ष मेरा भाई हुआ, उसने मुझे कॉल करके कहा था कि उसकी जान खतरे में है और जब मैं वहां पर पहुंची तब तुम्हारी मॉम ने उसका गला पकड़ रखा था, मैंने पीछे से उन्हें नहीं पहचाना और शूट कर दिया, तुम्हारी तरह मुझे भी अब पता चला है कि मैं किसी तरह की कोई माफिया प्रिंसेस हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अकेली बिताई है ध्रुव, मेरे अपनों ने मुझे प्यार और रिश्तों के नाम पर ठगा है तो मैं क्यों किसी के साथ धोखा करूंगी। तारा ने एक सांस में अपने दिल की बात ध्रुव के आगे रख दी थी। वो जानती थी कि अगर वो नॉर्मल तरीके से बात करती तो ध्रुव उसकी कभी नहीं सुनता। तारा को लगा कि अब ध्रुव उस पर यकीन कर लेगा,
ध्रुव उसकी तरफ पलटा और बेपरवाही से बोला, मैं सब कुछ पहले से जानता हूं। तारा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो बोली, तुम सब जानते हो तो फिर मुझे क्यों कैद कर रखा है? ध्रुव, तुम्हें पता है ना मैं इनोसेंट हूँ, मुझे फंसाया गया है। सब कुछ जानते हुए तुम मुझे सजा कैसे दे सकते हो? किस बात की सजा दे रहे हो? उल्टा, तुम्हें उस दक्ष मल्होत्रा को यहाँ कैद करके रखना चाहिए। जैसे जैसे तारा सवाल पूछ रही थी, ध्रुव की आंखें सर्द होती जा रही थी। उसने आगे बढ़कर तारा का गला पकड़ लिया था। तारा समझ नहीं पा रही थी कि अब तक ध्रुव का बर्ताव इतना बेपरवाह था, अचानक से वो इतना गुस्सा कैसे हो गया। जब ध्रुव जानता था कि वो मासूम है तो फिर वो उसे किस बात की सजा दे रहा है?